नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अयोध्या में 3 दिवसीय भव्य समारोह शुरू हुआ। असम में बचाव दल ने दिमाहासाओं में बाढ़ग्रस्त कोयला खदान से एक और शव बाहर निकाला। उत्तरी राज्य भीषण शीतलहर की चपेट में। लद्दाख में तापमान बेहद कम हो गया है और जोजिला में तापमान 0 से 31 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। और मलेशिया सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज दोपहर क्वालालंपुर में पुरुष युगल सेमीफाइनल में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2024 में 16,900 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। यह स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। नई दिल्ली में आज मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा है कि लगभग 24 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए, जबकि पिछले 10 वर्षों में 56,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ को नष्ट किया गया है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने ड्रग्स डिस्पोजल पखवाड़ा और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मानस 2 हेल्पलाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। श्री शाह ने नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की भोपाल क्षेत्रीय इकाई के नए कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया। ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा अभियान आज से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगा। इस अवधि के दौरान 2,411 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 44,792 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव आज से शुरू हुआ। इस अवसर पर श्री राम मंदिर को 50 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रामलला का पंचामृत और सरयू जल से अभिषेक किया गया और 56 पकवानों का प्रसाद चढ़ाया गया और महाआरती भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह मंदिर सदियों से त्याग, तपस्या और संघर्ष के बाद बना है। उन्होंने हमें हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान विरासत के रूप में इस मंदिर को बताया है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से शहर तक पहुंचने की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर कल दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में 3,000 युवा नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद के पहले दिन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ये कार्यक्रम बिना राजनीतिक संपर्क के राजनीति में 1 लाख युवाओं को शामिल करने संबंधी प्रधानमंत्री के स्वाधीनता दिवस के आह्वान के अनुरूप है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही न केवल निष्पक्ष होनी चाहिए बल्कि निष्पक्ष भी दिखनी चाहिए। आज बेंगलुरु में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि नौकरशाही हमारे संवैधानिक दृष्टि की संरक्षक है। भारत प्रमुख रक्षा निर्यात का केंद्र बन रहा है। यह लगभग 100 देशों के घरेलू स्तर पर निर्माण और निर्मित रक्षा उपकरणों को बेच रहा है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के रक्षा निवेशक और कॉरिडोर सेल के उप महानिदेशक अखिलेश कुमार मिश्रा ने कल अगरतला में लोकल टू फोकल फोकस MSME पर 1 दिवसीय जागरूकता सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि इससे जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग की सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र इस क्षेत्र में आपदा तैयारियों और जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देंगी। श्री सिंह ने कहा है कि यह नया केंद्र जम्मू क्षेत्र में भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने में सुविधा प्रदान करेगा। ये केंद्र देश में सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने में मौसम विभाग के मिशन में योगदान करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन में भारत की मेजबानी करने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया है कि आगामी कार्यक्रम महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने संबंधी अर्थपूर्ण संवाद और सहयोगात्मक प्रयासों को भी बढ़ावा देगा। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को आईटीसी रतन दीपा में भारत श्रीलंका साझेदारी पर पहले उच्च स्तरीय गोलमेज साझेदारी सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ करने संबंधी अवसरों को तलाशने की दिशा में नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं को भी मंच प्रदान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी आप और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आपकी नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के तहत कथित भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए एक अभियान गीत लॉन्च किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न केवल दिल्ली को धोखा दिया है बल्कि अपने नागरिकों का भी अहित किया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि कई भाजपा नेताओं ने अपने पते पर कई वोट पंजीकृत कराने के लिए आवेदन जमा किए हैं। असम में दिमा हसाओ जिले के उमरांगसो में बाढ़ग्रस्त कोयला खदान त्रासदी के लगभग 144 घंटे के बाद बचाव दल ने आज सुबह खदान से तीन शव निकाले। कोयला श्रमिक सोमवार की सुबह दिमा हसाओ जिले के उमरांगसो में कोयला खदान में अचानक पानी भर जाने के बाद फंस गए थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 5 मजदूर अभी भी लापता है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सुमनगु रत्नम 14 जनवरी से 8 जनवरी तक भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ये 10 वर्षों में सिंगापुर के किसी भी राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। सुमनगु रत्नम की राजकीय यात्रा भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ की प्रतीक भी बनेगी। उत्तर पश्चिम भारत में घने कोहरे के कारण अगले 2 दिनों तक गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल तक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लद्दाख में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जबकि जोजिला में तापमान 0 से 31 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग और वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने कहा है कि आज पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी और ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का भी अनुमान लगाया। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेन और उड़ाने सेवाएं बाधित हो रही है। दिल्ली आने वाली करीब 26 ट्रेनों में 9 से 10 घंटे तक की देरी चल रही है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्डिंग से पहले अपनी ट्रेन और उड़ानों की नवीनतम स्थिति जाँच कर ले। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर से 7 विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि वे देश भर से आमंत्रित 10,000 विशेष अतिथियों में से शामिल होंगे। एचडीएफसी के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख ने 2025 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर 6.4% रहने की उम्मीद जताई है जो वैश्विक औसत से 2 गुना है। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज कुआलालंपुर में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना दक्षिण कोरिया की सियो सियुंगजी और किम वॉन्ट हो से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।